चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले 17 श्लोक ये मंगलाचरण के श्लोक हैं और इनमें से पहले 14 ये विशेष हैं जिनके माध्यम से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कई तत्वों का स्पष्टीकरण करते हैं और इन 14 श्लोकों की व्याख्या वो पूरे 12 अध्यायों में करते हैं। इनमें से पहले 2 श्लोकों का वर्णन या इनका विश्लेषण वो पहले अध्याय में करते हैं। जब वो मंगलाचरण के श्लोकों को कहते हैं उसके बाद फिर इन 2 श्लोकों का वर्णन होता है और सर्वप्रथम जो श्लोक है उसकी चर्चा अब जारी है और हम कई बार इसको दोहरा चुके हैं, फिर से यहां पर दोहराएंगे। ये पहले श्लोक बताइए। जिसमें कविराज गोस्वामी एक तत्व में 6 तत्व इस सिद्धांत का वर्णन करते हैं। एक तत्व है भगवान श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु से पूरी तरह से अभिन्न है। और अगर हमें परम तत्व परम सत्य श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो पूरी तरह से इन 6 तत्वों को समझना आवश्यक होगा। बस वहीं पर लगा दीजिए नीचे, स्टिक इट देयर, सेम साइन, स्टिक इट देयर। तो फिर से श्लोक को दोहराएंगे, तो बोलिएगा। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संयकम्। तो इस एक श्लोक में 6 तत्वों का वर्णन है। जो ये 6 तत्व कौन से हैं आप एक एक करके बताते जाइएगा। पहला तत्व कौन सा है? गुरु, केवल गुरु। गुरुन बहुवचन का उल्लेख हो रहा है अर्थात कई गुरुजन गुरुजनों की बात हो रही है। दूसरा तत्व कौन सा है? माइक नहीं है यहां पर, माइक लाइए। दूसरा तत्व कौन सा है? ईश भक्तान, अर्थात भगवान के भक्त। तीसरा कौन सा है? ईश अवतार कान, ईश अवतार, भगवान के अवतार। चौथा तत्व कौन सा है? तत्प्रकाशांश, तत्प्रकाश, भगवान के प्रकाश, उनके विस्तार। पांचवा तत्व तत्शक्ति, भगवान की शक्तियां। और छठा तत्व तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो इन छह तत्वों में गुरु, गुरुन, ईश, भगवान के गुरु तत्व का वर्णन हो चुका है। और इस गुरु तत्व की चर्चा में हम देख चुके हैं कि वैसे गुरु भी भगवान से अभिन्न होते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रिय सेवक होते हैं। भगवान और गुरु की अभिन्नता ये उस दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए कि जिस तरह मायावादी लोग देखते हैं। वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न इसलिए है कि वो भगवान के बहुत प्रिय हैं, भगवान के वो सेवक हैं, निकट के सेवक हैं। तो अब आगे कविराज गोस्वामी चर्चा बढ़ा रहे हैं। ईश भक्तान, भगवान के भक्त। भगवान को भगवान के भक्तों से अलग नहीं किया जा सकता, जितना कि राजा को प्रजा से अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं राजा हूं परंतु मेरी प्रजा नहीं है, मेरा राज्य नहीं है, तो फिर किस तरह का राजा है वो? उसी प्रकार से अगर भगवान है परंतु उनका धाम नहीं है, उनके भक्त नहीं है, तो फिर कैसे भगवान हुए वो? तो अगर भगवान है तो भक्त भी है। भक्तों को भगवान से भिन्न नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनका अस्तित्व पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होता है। तो यहां पर कविराज गोस्वामी अब भक्ति तत्व का गुणगान करेंगे, भक्त तत्व का गुणगान करेंगे। सबसे पहली बार माइक है ना यहां पर, कोई पढ़िएगा, एक एक करके पढ़ते हैं कौन सी बातें यहां कविराज गोस्वामी भक्त तत्व के बारे में कहते हैं। अभक्तों का संग त्याग कर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। इसके लिए वो श्रीमद् भागवत के कई श्लोकों का प्रमाण सामने रखते हैं। विशेष करके उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, ततो दुस्संगमुत्सृज्य सत्सु सच्चेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ती मनोव्यासंग मुक्ति भी। वो कहते हैं ततः दुःसंगम उत्सृज्य, दुःसंगम मतलब बुरा संग, असत्संग, तो ऐसे संग उत्सृज्य को त्यागना चाहिए हे उद्धव। सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऐसे लोगों का संग करता है, सज्जेत, जो कि सत है, सत मार्ग में चल रहे हैं, सत्सु, या जो भगवान के भक्त हैं। और ऐसे जो संत होते हैं, संत एव अस्य छिन्दन्ति मनः व्यासंगम उक्तिभिः, उक्तिभिः मतलब उनके आदेश, उनके निर्देश, उनके उपदेश। ऐसे संतों के उपदेश द्वारा हमारे हृदय में जो भी भौतिक कलमश हैं वो सब धुल जाते हैं, सब निकल जाते हैं। और दूसरा प्रमाण में कविराज गोस्वामी रखते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो कि कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं, सतां प्रसंगान मम वीर्य संवितो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्मणि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि जो लोग सताम या भक्तों के संग में जाते हैं, प्रसंगान जो पूर्ण संग है उनका, ऐसा नहीं कि उस एक आध बार संग कर लिया, नहीं, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक भक्तों का संग करना चाहिए। सताम प्रसंगान, सतमार्ग में चलने वाले जो होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हीं का मात्र संग करना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, भगवान कपिल देव कहते हैं मेरे लीलाओं का, मेरे उपदेशों का श्रवण करना चाहिए, और ऐसा श्रवण करने से आराम से धीरे धीरे से भवन्ति हृत कर्ण, हमारे हृदय को और कर्णों को रसायना कथा, बहुत ही रसमय स्वादमय लगने लगती हैं ये कथाएं। हालांकि शुरुआत में भले न लगे, परंतु जैसे जैसे हम सुनते रहते हैं भक्तों के माध्यम से ये कथाएं, तो हमें अच्छे लगने लगते हैं। तत् जोशनार आशु अपवर्ग वर्तमनी, और इस प्रकार से हम बहुत ही तेज गति से इस मुक्ति के पथ पर, भव बंधन से मुक्त होने के पथ पर आगे चलते हैं, और क्रम से श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, ये क्रम से ये हमारे हृदय में उदित होते हैं, अंततः हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं भगवान के, केवल भक्तों का संग करने मात्र से। तो दूसरी बात बताइए, पढ़िएगा।
ऐसे भक्तों के संग में शुद्ध भक्ति प्राप्त की जा सकती है।
हाँ, तो इस यही सताम प्रसंगान श्लोक है, तीसरे अध्याय का, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक। ये भागवत का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है वास्तव में, क्योंकि इसमें हमारे भक्ति तत्व का सार है। केवल हम ये सब करते रहेंगे तो हमारे जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हो जाएगी। आगे पढ़िएगा।
भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं तथा भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं।
हाँ, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान भक्तिर हृदय कृष्ण सतत विश्राम। ईश्वर स्वरूप भक्त, हम पहले सुन चुके हैं कि गुरु ईश्वर के स्वरूप होते हैं, कृष्ण के स्वरूप होते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं न केवल जो गुरु तत्व है वही कृष्ण के स्वरूप है, परंतु स्वयं भगवान भी कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, अर्थात भक्त कृष्ण का स्वरूप क्यों माना जाता है? क्योंकि वो कृष्ण का अधिष्ठान है या निवास स्थान है। क्यों ऐसे कहा जाता है? भक्तिर हृदय कृष्णिर सतत विश्राम, विश्राम स्थान है भक्त का हृदय भगवान के लिए, क्योंकि भगवान सदैव भक्त के हृदय में बड़े आनंद से निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्त को भी कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। और आगे चल के कविराज गोस्वामी फिर ये प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। वो कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम, मैं साधुओं के हृदय में हूं, साधुना हृदयम त्वहम, और साधु मेरे हृदय में हैं, मेरे सिवाय साधु गण कुछ जानते ही नहीं हैं, और उनके सिवाय मैं किसी चीज को नहीं जानता। तो ये भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का संबंध है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं साधु के हृदय में हूं, साधु मेरे हृदय में है। आगे बढ़िएगा।
ऐसे भक्त स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं।
ऐसे भक्त स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, इतना ही नहीं, वो तीर्थ स्थानों को पवित्र करते हैं। ये कौन सा श्लोक है बताइए, भागवत का? किस ने कहा था ये श्लोक? भगवद्गीता भागवतास। युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी से कहा था। ये श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भवद्विधा भागवतास तीर्थ भूत स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन कदाभृत। वो कहते हैं कि हे विदुर जी, भवद्विधा भागवताः, आप जैसे भागवत जो होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तीर्थ भूतः स्वयं विभो, आप साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, वास्तव में आप ही तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान बनाते हैं। स्व अंतःस्थेन गदाभृतः, गदाभृतः मतलब गदाधार, गदाधारी, गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण स्व अंतःस्थेन आपके अंतःकरण में निवास करते हैं, इसलिए आप साक्षात तीर्थ स्थान हैं और आप तीर्थ स्थानों को पवित्र करते हैं, स्थानों को तीर्थ स्थान बना डालते हैं। तो यह है भक्तों की महिमा। और कविराज गोस्वामी ऐसे कहकर हम सबको सिखाना चाहते हैं कि भक्त कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर भगवान को समझना है तो भक्तों को भी समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे तो केवल भगवान में विश्वास है, भक्तों में विश्वास नहीं है, मुझे रुचि तो केवल भगवान में है, भगवान के भक्त क्या है, ऐसा नहीं। जितने महत्वपूर्ण भगवान हैं उतने ही महत्वपूर्ण भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर वास्तव में हम भगवान को चाहते हैं तो हम उन चीजों को करना चाहेंगे जो भगवान चाहते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों की सेवा करते हैं तो फिर हमें क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में बहुत रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी भक्त तत्व, ईश भक्त, ये वर्णन करते हैं। और आगे घुमाइएगा, वो कहते हैं कि वास्तव में दो प्रकार के भक्त होते हैं। कौन से दो प्रकार के भक्त हैं, पढ़िएगा।
भगवान के स्वयं पार्षद,
भगवान के स्व पार्षद, और दूसरे
साधक।
साधक नव दीक्षित तथा भावी भक्त, मतलब जो भक्त बनना चाहते हैं, हालांकि ये भी शुद्ध भक्त कहलाते हैं परंतु अभी तक उनकी साधना पूर्ण नहीं हुई है। जो साधक होते हैं वो साधन कर रहे होते हैं, साध्य की प्राप्ति पूर्णतया अब प्राप्त नहीं हुई होती है। दो चीजें हैं, साधन और साध्य। साध्य हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कोई साधन को स्वीकार करते हैं। साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। तो जो भक्त पूरी तरह से सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुए होते हैं उनको साधक कहते हैं। भले वो प्रेम भक्ति के अलग अलग स्तर में स्थित हो, पूरी तरह से शत प्रतिशत शुद्ध न हो, फिर भी क्योंकि वो पूरे हृदय से इस मार्ग में लगे हुए हैं इसलिए उन्हें भी शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो ये या तो नौसुखिया भक्त हैं या भावी भक्त हैं। नौसुखिया इस दृष्टि से किनके तुलना में नौसुखिया माने जाते हैं, जो सिद्ध अवस्था में हैं उनकी तुलना में इनको नौसुखिया कहते हैं। और उनके विपरीत हैं भगवान के पार्षद। भगवान के पार्षद मतलब वो भक्त जो भगवान के निकट रहते हैं, बहुत निकट हैं भगवान के, जिन्होंने अपने भक्ति के पथ में सिद्धि प्राप्त कर ली है, इनको परिषद या पार्षद कहते हैं। भगवान हमेशा अपने पार्षदों से घिरे हुए रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते हैं। और ऐसे पार्षदों के भी दो विभाग माने जाते हैं। पढ़िएगा कौन से दो प्रकार के पार्षद कौन से हैं।
भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित, भगवान की मधुरता से आकर्षित।
हाँ, तो दो प्रकार के भक्त पार्षद होते हैं। एक जो भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होते हैं, तो उनकी गति क्या है, कहाँ जाते हैं वो? वैकुंठ में जाते हैं, क्योंकि वैकुंठ भगवान के ऐश्वर्य का प्राकट्य है। ये ऐश्वर्य धाम है वैकुंठ लोक। तो जो लोग, जो भक्त भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित होते हैं, ये भी शुद्ध भक्त हैं, परंतु उनके लिए स्थान वैकुंठ लोकों में है। इसके विपरीत वो भक्त हैं जो कि भगवान के ऐश्वर्य से इतना प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान के माधुर्य से प्रभावित होते हैं, तो उनकी गति क्या है? वृंदावन जाते हैं, वैकुंठ नहीं, वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ईश भक्ता, ईश भक्त भक्तों की चर्चा करते हैं। और ईश भक्त की का उदाहरण कौन सा है बताइएगा, पहले हम सुन चुके हैं पिछली बार, श्रीवास ठाकुर आदि, ये भगवान के भक्त तत्व है। अच्छा, तो यहां मार्क करते जाइएगा। अभी कौन से तत्वों की चर्चा अभी तक हम कर चुके हैं, ये पिछली बार बताए गए थे दो तत्व, पहले गुरु वो भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक। और यहां ईश भक्तान, तो इन दो तत्वों का वर्णन हम कर चुके हैं। अब हम कहां आए हैं, ईश अवतार कान, ईश अवतार भगवान के अवतार, जो अवतीर्ण होते हैं वो अवतार हैं। अवतीर्ण होते हैं मतलब जब भगवान का कोई रूप इस भौतिक जगत में प्रकट होता है तो उसे अवतार कहते हैं। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं कि तीन प्रकार के अवतार होते हैं। कौन से हैं ये तीन प्रकार?
अंश अवतार।
एक एक करके पढ़िएगा। सबसे पहला कौन सा है? अंश अवतार। दूसरा प्रकार?
गुण अवतार।
गुण अवतार। तीसरा प्रकार? शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश, शक्ति आवेश, जिनमें शक्ति का आवेश है, जिनके भीतर भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, और ऐसे शक्ति के द्वारा ऐसे भक्त कोई अद्भुत असामान्य कार्य करते हैं, विशेष शक्ति प्रदान करते हैं अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान, ऐसे भक्तों हैं। तो ऐसे शक्ति आवेश अवतारों के उदाहरण पढ़िएगा।
पृथु महाराज
में कौन सी विशेष शक्ति प्रदान की थी, आप बता सकते हैं? प्रजापालन शक्ति। ये शक्ति आवेश अवतार है, ज्यादातर ये जीव तत्व ही होते हैं, परंतु क्योंकि विशेष शक्ति प्रदान की गई होती है उनके अंदर, इसलिए उनको अवतार माना जाता है, परंतु शक्ति आवेश अवतार। तो पृथु महाराज को भगवान ने प्रजापालन शक्ति प्रदान की थी। दूसरा पढ़िएगा, दूसरा उदाहरण शक्ति आवेश अवतार का।
व्यास देव
भी एक शक्ति आवेश अवतार हैं। व्यास देव का विशेष कार्य क्या है? शास्त्रों की रचना। जो व्यास देव ने किया है वो कोई साधारण कार्य नहीं है, सारे वेद का संपादन उन्होंने किया है। पहले व्यास देव के पहले अर्थात इस द्वापर युग के अंत तक वेद केवल एक हुआ करता था। वेद मतलब ज्ञान, और ये लिखित रूप में नहीं हुआ करता था। लोग जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो केवल गुरु से सुनते थे और सुनने मात्र से याद रख पाते थे। वैदिक काल में सभी श्रुति धर होते थे, एक बार सुनने से याद रह जाता था। लेकिन द्वापर के अंत में व्यासदेव ने समझ लिया कि कलयुग में लोगों की बुद्धि बहुत कमजोर होगी, उनकी स्मृति शक्ति भी बहुत कमजोर होगी, इसलिए केवल एक बार या हजार बार सुनने से भी वो याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए लिखित रूप में इन चीजों को होना बहुत आवश्यक है। तो सारे वेद को उन्होंने विभाजित कर चार वेद बनाए। चार वेदों के साथ साथ कई उपनिषद, अरण्यक आदि, पुराण आदि सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने की। तीसरे उदाहरण बताइए शक्त्यावेश अवतार की।
कुमार
चतुष्कुमार। चतुष्कुमार को भगवान ने कौन सी शक्ति प्रदान की? ज्ञान शक्ति, ज्ञान, ज्ञान की शक्ति। नारद मुनि भी एक शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। कौन सी शक्ति प्रदान की भगवान ने उनको? भक्ति शक्ति। और एक शक्त्यावेश अवतार है परशुराम। परशुराम को कौन सी शक्ति प्रदान की भगवान ने? दुष्ट दमन शक्ति। दुष्टों का दमन करने के लिए उनको विशेष भगवान ने बल प्रदान किया। ऐसे बहुत सारे शक्त्यावेश अवतार हैं। उनमें से ऐसे भी शक्त्यावेश अवतार हैं जो कि विष्णु तत्व माने जाते हैं, जो स्वयं भगवान हैं। उदाहरण व्यासदेव इस समय केवल, लेकिन साधारण व्यासदेव जीव होते हैं। अनंत शेष ये विष्णु है, विष्णु तत्व है, फिर भी वो शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। भूधारण शक्ति, ये सारे ब्रह्मांडों का धारण करने की शक्ति भगवान ने अनंत शेष में प्रदान की है। तो ये है शक्त्यावेश अवतार। अधिकतर ये शक्त्यावेश अवतार जो है जीव तत्व रहते हैं, परंतु अनंत शेष जैसे उदाहरणों में वो विष्णु तत्व भी होते हैं। अब बीच में है गुण अवतार। गुण अवतार का मतलब कोई समझा सकते हैं? कौन से गुण, क्या गुण? हाँ, तीन गुणों के अवतार जो भौतिक जगत में है। कौन से तीन गुण? सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। और ये तीन विशेष मूर्तियां हैं जो कि इन तीन गुणों के अधिष्ठाता देव हैं, इनका नियंत्रण करते हैं। रजगुण का नियंत्रण कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। सत्वगुण का विष्णु और तमगुण का शिव जी। तो ये तीनों जो हैं ये गुण अवतार माने जाते हैं, और इन तीनों का तत्व अलग अलग है। ब्रह्मा जी साधारणतः जीव तत्व होते हैं, विष्णु तो विष्णु तत्व ही होते हैं, और शिव जी ये न तो जीव तत्व हैं और न ही विष्णु तत्व। इनका निराला ही अलग से ही स्थान है, शिव तत्व माने जाते हैं। तो ये है गुण अवतार। और है फिर अंश अवतार, भगवान के अंश या विस्तार रूप। तो इनके उदाहरण पढ़िएगा।
पुरुष अवतार।
तो पुरुष अवतार कौन से हैं? नहीं, वो बाद में है। पुरुष अवतार महाविष्णु, फिर गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। महाविष्णु का और एक नाम है कारणोदकशायी विष्णु, कारण उदक शायी विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं। कारण सागर वो सागर है, विरजा भी कहते हैं इसको, विरजा नदी, जो कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में है। यहां पर भगवान महाविष्णु के रूप में शयन करते हैं इस जल के ऊपर, इसलिए उनका नाम है कारण उदक। उदक मतलब जल, कारण उदक शाही विष्णु या कारणोदक शाही विष्णु। और वो जब सांस लेते हैं बाहर, तो फिर सारे ब्रह्मांड जो हैं उनके शरीर से उत्पन्न होते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड जो है उनमें फिर से चले आते हैं। और हर एक ब्रह्मांड में जब वो सांस बाहर लेते हैं तो हर एक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं अपने आप को विस्तार करके। हर एक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश होते हैं, अपने दिव्य पसीने से हर एक ब्रह्मांड को अंदर से आधा भर देते हैं। तो इस जल को गर्भ उदक सागर कहा जाता है, गर्भोदक सागर। और इस गर्भोदक सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं अनंत शेष के ऊपर, इसलिए उनको गर्भोदकशायी विष्णु के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर यही वो गर्भोदकशायी विष्णु है जिनके नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न होता है, और इस पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और इस पुष्प के भीतर ही 14 भुवन होते हैं, 14 लोक, और इनके भीतर एक लोक होता है श्वेत द्वीप, जो कि इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर वैकुंठ लोक होता है। और इस श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है, दूध का सागर, और वहां पर उस सागर के बीच में अनंत शेष के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है, जो कि गर्भोदकशाय विष्णु के विस्तार रूप माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदकशाय विष्णु। क्षीर मतलब दूध, क्षीर उदक शाही विष्णु। और यही क्षीरोदकशाय विष्णु है जो कि हर प्राणी के हृदय में परमात्मा है, अंतर्यामी है। और यही क्षीरोदकशाय विष्णु है जो कि अवतार लेते हैं समय समय पर, और जिनके पास की देवतागण चले जाते हैं जब कोई उत्पात ब्रह्मांड में होता है तब। तो ये तीन विष्णु रूप, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, ये तीन पुरुष अवतार कहे जाते हैं। तो ये अंश अवतार के एक उदाहरण हैं। दूसरे हैं, क्या लिखा है यहां,
मत्स्य
अवतार। इस प्रकार से कितने अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, राम अवतार, ऐसे अनगिनत अवतार हैं भगवान के। ये सब अंश अवतार में माने जाते हैं। तो पहले अंश अवतार का उदाहरण कविराज गोस्वामी क्या दे चुके हैं, किनका नाम कह चुके हैं, जैसे भक्तों के लिए उदाहरण उन्होंने दिया श्रीवास ठाकुर, तो अवतार का उदाहरण है अद्वैत आचार्य, जो कि महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो ठीक है, ये हुआ ईशावतार, भगवान के अवतार की चर्चा। तो अब अगले तत्व कौन से हैं, अगला तत्व तत्प्रकाश, तत्प्रकाशांश या तत्प्रकाश। तत् मतलब उनका, भगवान के प्रकाश रूप, भगवान के विस्तार, भगवान के अलग अलग विस्तारित रूप होते हैं। तो यहां कविराज गोस्वामी बताते हैं दुई रूप होए भगवान र प्रकाश, एक तो प्रकाश होए आर तो विलास। दुई रूप होए भगवान र प्रकाश, तो भगवान का जो प्रकाश है वो दो रूप में है, एक है प्रकाश और दूसरे है विलास। इसे समझना आवश्यक है, वास्तव में इतनी गहराई में भगवत तत्व की चर्चा और कहीं नहीं पाई जाएगी। और जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे اور یہ ساری چیزیں جان لیں گے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بہت ہی بھاگیشالی ہیں. بھگوت تتو کا اتنی گہرائی میں گیان ہمیں پراپت ہوا ہے, یہ ہمارا بڑا سوبھاگیہ ہے. پرکاش وہ ہے, پرکاش بھگوان کے وہ وبھن روپ ہیں جو بالکل بھگوان سے ملتے جلتے ہیں, بالکل کوئی انتر نہیں ہے. تو پرکاش کیا ہے ذرا پڑھیے گا, یہاں کیا لکھا ہوا ہے.
یہ کرشن کے دوارا ان کی لیلاؤں کے لیے پرکٹ کیے گئے روپ.
تو یہاں بھی ورنن دیتے ہیں, ورنن پریبھاشا دیتے ہیں کویراج گوسوامی پرکاش وگرہ کا. ایک وگرہ جدی ہوئے بہو روپ آکار تو بھید نہیں ایک ہی سوروپ. ایک ہی وگرہ, ایک ہی روپ ہیں بھگوان شری کرشن, لیکن وہ ہو جاتے ہیں بہو روپ. اور یہ بہو روپ کیسے ہوتے ہیں, آکار تو بھید نہیں, آکار میں ان بہو روپوں کا بھید نہیں ہے بھگوان کرشن سے, ایک ہی سوروپ ہے. اور آگے بھی یہی پریبھاشا کویراج گوسوامی دیتے ہیں. انیکتر پرکٹتا روپسیہ ایکسیہ ایکدا سروتھا تت سوروپیو سپرکاش اتیریتے. وہ کہتے ہیں کہ ایکسیہ, وہی ایک بھگوان جب انیک ہو جاتے ہیں, انیک روپ پرکٹ کرتے ہیں, پرکٹتا روپسیہ ان کے روپ کو انیکتر مطلب انیک جگہوں میں, ایکتا ایک ہی سمے پر, سروتھا ہر درشٹی سے, ہر طرح سے وہ ایک ہوتے ہیں, ایک سمان ہوتے ہیں, تب ان کو پرکاش وگرہ کہتے ہیں. سادھارن شبدوں میں کہا جائے تو جب بھگوان شری کرشن جو کہ ایک ہیں اپنے آپ کو انیک بناتے ہیں, اور یہ سب بہو روپ جو ہیں وہ بالکل بھگوان کرشن کی طرح دکھتے ہیں, اور ہیں بھی, کیول دکھتے نہیں ہیں بھی پوری طرح سے, اور ایک ہی سمے پر انیک ستھانوں میں یہ وبھن روپ رہتے ہیں, تو ان کو پرکاش وگرہ کہتے ہیں. تو جب ہم ادھارن پڑھیں گے تو یہ بات سپشٹ ہو جائے گی. تو ادھارن پڑھیے گا, کون سے دو ادھارن یہاں پر دیے ہوئے ہیں.
کرشن
کا 16108 رانیوں سے وواہ. جب بھگوان شری کرشن نے وواہ کیا, یا جب بھگوان شری کرشن اپنے پٹرانیوں کے ساتھ, مہیشیوں کے ساتھ نواس کرتے تھے دوارکا میں, تو یہ ادبھت بات ہے کہ ہر ایک مہارانی کے ساتھ شری کرشن الگ 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 تھے. جب نارد منی دوارکا میں گئے تو انہوں نے بہت ادبھت درش دیکھا. سب سے پہلے وہ رکمنی دیوی کے محل میں گئے, وہاں پر شری کرشن رکمنی دیوی کے ساتھ بیٹھ رہے تھے اور کچھ چرچا کر رہے تھے. بھگوان شری کرشن نے نارد جی کا سواگت کیا, ارے منیور آپ آئے پدھاریے, ہمارا سوبھاگیہ ہے کہ ہمارے ہم جیسے گرہستوں کے گھر میں آپ آئے, ہمارے ادھار کے لیے ہی آپ یہاں پر آئے ہیں. تو شری کرشن ایک سادھارن گرہست کشتریہ کی بھومی کا نبھا رہے ہیں, اور جیسے کہ گرہست کا کرتویہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سادھو ان کے گھر میں آتے ہیں تو ان کا بڑے ہردے سے سواگت کرنا چاہیے. تو بھگوان شری کرشن نے نارد منی سے کہا کہ آپ کی کرپا دیجئے مجھے. تو نارد منی نے کچھ کہا نہیں, وہاں سے نکل پڑے, دوسرے محل میں گئے, وہاں دیکھا کہ شری کرشن جامبوتی دیوی کے ساتھ کچھ دوسرا کاریہ کر رہے ہیں. تو کرشن نے نارد جی کو دیکھا, ارے نارد منی کب آئے آپ دوارکا میں, ایسا مانو کہ پہلے محل میں انہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہو. वही कृष्ण है ना, पहले महल में भी तो उन्हीं ने तो नारद मुनि को स्वागत किया था, परंतु दूसरे महल में जब नारद मुनि आए तो कृष्ण ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि उनको पता ही नहीं कि नारद मुनि से उनकी बात हुई है पहले महल में रुक्मिणी देवी के साथ। तो नारद मुनि ने उनका स्वागत स्वीकार किया, तीसरे महल में गए, चौथे महल में गए, ऐसे 16,108 महलों में भ्रमण किया उन्होंने। और उन्होंने देखा कि हर महल में श्री कृष्ण अपनी महारानी के साथ कुछ न कुछ कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कहीं अपने रानी के साथ वो शतरंज खेल रहे हैं, कहीं वो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, कहीं वो यज्ञ में बैठकर स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं, कहीं वो अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण, एक ही समय पर 16,108 महलों में विराजमान थे और अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो नारद मुनि ने ये जब देखा तो वो बहुत ही विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और भगवान का गुणगान करते करते चुपचाप वहां से निकल गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। हर एक महल में भगवान उनका स्वागत करते थे, मानो कि उनको पता नहीं कि पिछले कितने सारे महलों में उन्होंने बात की है उनसे। और नारद मुनि भी चुप रहे, उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। अरे अभी अभी तो मिले आपसे, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि हम द्वारका में हैं। नारद मुनि ने भी कुछ बात कहा नहीं, वो ऐसे बस चुपचाप देखते रह गए बस भगवान के चमत्कारों को। तो जितने भी ये 16,108 भगवान के रूप हैं बिल्कुल एक समान है दिखने में, बिल्कुल ठीक ठाक, हर दृष्टि से एक, कोई भी अंतर नहीं है इन 16,108 रूपों में। तो इनको प्रकाश विग्रह कहते हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण है। और जब सुधर्म सभागृह में सुबह में जाने का समय हो जाता था तो ये सारे के सारे 16,108 कृष्ण अपने अपने महलों से बाहर आते थे और एक कृष्ण हो जाते थे, और एक कृष्ण फिर अपने रथ में सवार होकर सुधर्मा में जाते थे। सुधर्मा सभागृह में फिर वो सब राज्य की बातें होती थी, अब कौन आक्रमण कर रहा है, उनका सामना कैसे करना चाहिए वगैरह, ये सब बातें होती थी। तो ये भगवान कृष्ण एक हैं। और फिर सुधर्मा को छोड़कर जब वापस आते थे फिर से उनके प्रकाश विग्रहों का प्राकट्य होता था, 16,108 प्रकाश विग्रह। तो ये उदाहरण है प्रकाश विग्रह का। दूसरा उदाहरण कौन सा है?
रासलीला।
रासलीला में भगवान ने क्या किया, कितनी गोपियां थी रासलीला में? 2, 4, 10, 20 कितने थे? अनगिनत थे, बहुत बड़ी संख्या में गोपियां थी, ब्रज की गोपियां। ब्रज भी तो आखिर में ये भौतिक जगत नहीं है ना, ये तो साक्षात भगवान का धाम है। तो अनगिनत गोपियों के साथ में भगवान ने रासलीला की, भगवान एक, गोपियां अनेक, फिर भी हर एक गोपी ने अनुभव किया प्रत्यक्ष रूप से कि श्री कृष्ण उनके साथ रासलीला कर रहे हैं। और ये कोई वहम नहीं था, कोई सपना नहीं था, वाकई श्री कृष्ण हरेक गोपी के साथ रासलीला कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा हरेक गोपी यही सोच रही थी कि कृष्ण केवल मेरे साथ में है, अन्य गोपियों के साथ नहीं है। परंतु कृष्ण भगवान वास्तव में हरेक गोपी के साथ उपस्थित थे, हर एक गोपी के साथ रासलीला कर रहे थे। तो इतने सारे जो रूप हुए भगवान श्री कृष्ण के जो उन्होंने प्रकट कराए रासलीला के समय, वो कौन से रूप हैं? वो भी प्रकाश विग्रह है, बिल्कुल दिखने में या हर दृष्टि से तत्व में भी वही कृष्ण है, कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए यहां पर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, आकारे तो भेद नहीं एक ही स्वरूप, आकार में बिल्कुल कोई भेद नहीं, वही कृष्ण के इतने सारे प्रकाश विग्रह है। प्रकट हो गए। तो ये है प्रकाश विग्रह के उदाहरण। यहां पे श्रीमद् भागवत के कई श्लोक कविराज गोस्वामी कहते हैं। चित्रम बतैतत् एकेन वपुषा युगपत् पृथक गृहेषु द्वष्ट सहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। चित्रम बत, चित्र मतलब बहुत ही अद्भुत, बत मतलब हाय, देखो कितनी अद्भुत बात है कि वही श्री कृष्ण एकेन, एक ही श्री कृष्ण वपुषा, उनका एक ही रूप था, युगपत पृथक, कैसे वो एक ही समय भिन्न भिन्न रूप धारण कर लिए। और गृहेशु द्वि अष्ट साहस्रम स्त्री एक उदावहत। द्वि अष्ट सहस्रम, द्वि अष्ट मतलब 16, सहस्र मतलब हजार, तो 16,000 रानियों के साथ उन्होंने एक साथ विवाह किया द्वारका में। तो ये एक उदाहरण। और दूसरा उदाहरण वो है रासलीला का। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्वयोः। जबकि श्री कृष्ण गोपियों से घिरे हुए थे और उन्होंने रासलीला आरंभ की, तब कृष्ण जो कि योगेश्वर हैं, सारे योग सिद्धियों के स्वामी हैं, तो उन्होंने क्या किया, तासा मध्य द्वयोर्वयोः, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, द्वयोर्वयोः मध्य, एक गोपी यहां एक गोपी यहां, तो कृष्ण बीच में, और इस गोपी के बाद और एक गोपी, तो उन दोनों के बीच में कृष्ण। ऐसे भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया। तो ये जितने भी रूप हैं ये सब प्रकाश विग्रह हैं। और दूसरी श्रेणी कौन सी है,
विलास विग्रह।
विलास विग्रह, तो विलास विग्रह क्या है जरा पढ़िएगा।
हर रूप के विभिन्न लक्षण।
यहां परिभाषा दे रहे हैं कविराज गोस्वामी। एक विग्रह किंतु आकर होय अन, अनेक प्रकाश होय विलास तार नाम। एक विग्रह, भगवान श्री कृष्ण एक ही है, उनका रूप एक ही है, आकार होय अन, तो जितने भी ये विस्तार रूप हैं तो श्री कृष्ण, परंतु उनका आकार उनका रूप अलग है। अनेक प्रकाश होय विलास तार नाम, तो ऐसे प्रकाशों का नाम है विलास। और इसके लिए उदाहरण क्या है पढ़िएगा।
बलदेव।
बलदेव सबसे पहले विलास विग्रह श्री कृष्ण के हैं बलराम। बलदेव, बलदेव में और श्री कृष्ण में अंतर है, क्योंकि यहां बताया हुआ है कि विलास विग्रह तो श्री कृष्ण से अभिन्न है, फिर भी रूप में थोड़ा अंतर है। प्रकाश विग्रहों में और कृष्ण में अंतर नहीं है कोई रूप का या आकार का, परंतु विलास विग्रह और कृष्ण में अंतर है रूप का। और सबसे पहले विलास विग्रह बलराम जी हैं। हम रोज सुबह कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या दिखाई पड़ता है। बलराम जी प्रथम विलास विग्रह है ना श्री कृष्ण के, तो अंतर क्या है दोनों में, एक गोरे हैं एक सांवले हैं बस। तो प्रभुपाद बताया करते हैं बलराम जी और कृष्ण जी में एक ही अंतर है कि कृष्ण सांवले हैं, बलराम गोले हैं, गोरे हैं, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं उनके रूप में। और उसके बाद बलराम अपने आप को फिर आगे विस्तार करते हैं और कई विलास रूप होते हैं। कौन से हैं ये विलास रूप,
नारायण।
नारायण जितने भी नारायण स्वरूप हैं वैकुंठ जगत में, वो भी भगवान के विलास रूप माने जाते हैं। विलास क्यों, क्योंकि उनकी उनका आकार भिन्न है। नारायण की कितने भुजाएं होती हैं, चार, चतुर्भुज। और श्याम सुंदर गोविंद श्री कृष्ण के कितने होते हैं? दो, द्विभुज है। बलदेव द्विभुज है परंतु नारायण चतुर्भुज है, और बलदेव से विशेष करके चतुर्व्यूह का प्राकट्य होता है। चतुर्व्यूह कौन से हैं? हाँ बताइए। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है। ठीक है, ये चार हैं, और विस्तार में आगे चल के इनके बारे में भी वर्णन करने वाले हैं कविराज गोस्वामी, और विशेष करके जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देंगे तो और भी विस्तार में चर्चा करेंगे इस चतुर्व्यूह के बारे में। तो ये उदाहरण हैं विलास विग्रह, विलास विग्रह के। तो ये अंतर है प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह में। अच्छा, अभी हम बहुत बोल लिए, अभी आप बोलिए, आप में से दो चार भक्त बोलिए अभी कि प्रकाश विग्रह क्या है और विलास विग्रह क्या है, और प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह में अंतर क्या है। हाँ बताइए, आप में से जो हाथ ऊपर कीजिए, आप में से जो बताना चाहते हैं संक्षेप में केवल बताइए। माइक, हाँ जी बताइए।
प्रकाश विग्रह भगवान के समान रूप आकार, भगवान के कृष्ण के समान रूप है, कोई भी अंतर नहीं होता उनके रूप आकार में, सब समान।
थोड़ा अंतर है या नहीं है?
नहीं,
बिल्कुल अंतर नहीं है।
और विलास में थोड़ा अंतर होता है, उनका रंग जो है कृष्ण का रंग सफेद है, काला है, बलराम जी का रंग सफेद है, उनके
विलास का अंतर होता है। हाँ, विलास विग्रह में अंतर थोड़ा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। थोड़ा अंतर का उदाहरण है बलराम जी, तो दोनों में अंतर क्या है?
अलग
रंग का, कांति का, बस इतना है। और बताइए चतुर्व्यूह, इनमें अंतर कम है या अधिक है? अधिक है। क्यों?
चार
भुजाएं हैं जबकि श्री कृष्ण के दो भुजाएं हैं। अच्छा, आप में और कोई बताइए। देखिए, किसी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सिखाना चाहिए, उसे बोलना चाहिए। जब उसी चीज को हम व्यक्त करने जाते हैं हमें पता चलता है कि हम उस चीज को समझे हैं या नहीं। जब सुनते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हम समझ गए हैं, जब उसी चीज को हम दोहराने जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वास्तव में हम समझे हैं या नहीं। हाँ जी बताइए, संक्षेप में बताइए कि ये प्रकाश तत्व क्या है, प्रकाश विग्रह क्या है और विलास विग्रह क्या है।
प्रकाश विग्रह जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, विस्तार करते हैं वह भिन्न है, और विलास विग्रह में जैसे कि प्रथम भगवान का विस्तार है बलदेव जी बलराम, तो उनका क्रांति का भेद है। इसके बाद जो भगवान नारायण है उनमें कौन सा फर्क है कृष्ण से, जैसे कि कृष्ण जो कंसे धारण करते हैं, नारायण चार चतुर्भुज है और हर भुज में जैसे पूजा में चक्र है, गदा है, पद्म है, बहुत भेद है नारायण।
तो प्रकाश विग्रह है और विलास विग्रह में अंतर क्या है?
प्रकाश विग्रह स्वयं कृष्ण कृष्ण जैसे होते हैं, तो कोई भेद नहीं होता, और विलास विग्रह में भगवान से भेद हो सकता है।
तो जो विलास विग्रह हैं वो भी कृष्ण है या नहीं है?
कृष्ण
वो है। हाँ, वो भी कृष्ण है, और प्रकाश विग्रह वो भी कृष्ण है या
कृष्ण?
तो दोनों कृष्ण हैं, प्रकाश विग्रह भी कृष्ण है, विलास विग्रह भी कृष्ण है, परंतु दोनों में अंतर क्या है? प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह में अंतर क्या है?
इतने अंतर है कृष्ण जरूर, प्रकाश विग्रह स्वयं कृष्ण है, रूप का भेद नहीं होता।
एक शब्द हम ढूंढ रहे हैं, आकार। प्रकाश विग्रह आकार में बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं, परंतु विलास विग्रह में केवल आकार का अंतर है बस। ठीक है, तो ये हुआ प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। तो और कोई भक्त बताइए, अब इन दोनों के उदाहरण बताइए, प्रकाश विग्रह के उदाहरण बताइए कोई। हाथ ऊपर। हाँ जी, या माइक भेजेंगे यहाँ पर। प्रकाश विग्रह के उदाहरण और उनको प्रकाश विग्रह क्यों कहते हैं, विलास विग्रह के उदाहरण और उनको विलास विग्रह क्यों कहते हैं।
प्रकाश विग्रह भगवान के विस्तार है, प्रकाश विग्रह है
क्यों है,
भगवान एक ही रूप।
हाँ, एक ही रूप।
द्वारे का रूप इतना 16,000 ऐसा 8 रानी के साथ विहार के टाइम में भगवान के एक ही रूप
है। बहुत अच्छा, ये है प्रकाश विग्रह। है
विलास विग्रह ऐसा है कि अनंत कोटि वैकुंठ जगत है, अनंत कोटि वैकुंठ जगत नारायण रूप में अलग अलग विग्रह अलग अलग एक ही भगवान है किंतु अलग अलग रूप में विलास।
बहुत अच्छा, तो वैकुंठ जगत में अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, हर एक वैकुंठ लोक के ऊपर एक अधिष्ठाता विष्णु रूप हैं, जिनको नारायण स्वरूप कहते हैं, और उनके चतुर्भुज हैं, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण के विलास विग्रह माने जाते हैं। हैं वो स्वयं कृष्ण, परंतु रूप में अंतर है, इसलिए उनको विलास विग्रह कहते हैं। तो ये है तत्प्रकाश, भगवान के प्रकाश। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस सिद्धांत को हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और इसके बाद फिर यहां, हाँ टिक कर दीजिए यहां पर, तत्शक्ति। गुरु, भक्त, अवतार और प्रकाश, इन चार तत्वों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब पांचवे तत्व की चर्चा करना है। पांचवा तत्व कौन सा है? तत्व शक्ति, भगवान की शक्ति। भगवान की शक्तियां कविराज गोस्वामी कहते हैं तीन प्रकार के होते हैं, तो पढ़िएगा तीन शक्तियां कौन सी हैं भगवान श्री कृष्ण की। शक्ति तत्व जी, तो भगवान की शक्तियां तीन प्रकार के। सर्वप्रथम वैकुंठ जगत में लक्ष्मीगण, कितने लक्ष्मी देवियां हैं, दो हैं, चार हैं, दस हैं, कितने, अनगिनत, इनकी गणना नहीं की जा सकती। साधारणतः लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी देवी एक ही है, हाँ वैसे है एक ही, तत्व में एक ही है, परंतु हर एक जगह, क्योंकि भगवान के विस्तार इतने हैं, भगवान के इतने विलास विग्रह हैं, तो उसी प्रकार से उनके साथ में लक्ष्मी देवी तो होनी है। तो अनेक लक्ष्मी देवियां हैं वैकुंठ में, हर एक वैकुंठ लोक में लक्ष्मी देवी निवास करती हैं नारायण के साथ में। दूसरे हैं महिषी गण द्वारका में, महिषी मतलब रानियां, जितने भी रानियां हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में, वो भी भगवान की शक्तियां मानी जाती हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी, 16,108। तो 16,100 कहां से ये रानियां आई। हाँ जी, माइक दीजिए यहां पर, माइक में बोलते हैं ताकि सभी भक्त सुन सके।
अरे
हाँ, जब भौमासुर का वध किया तो जितने भी राजकन्याओं को भौमासुर ने बंद कर रखा था उनको मुक्त कर दिया श्री कृष्ण ने, और ये सब क्षत्रिय थी, क्षत्रिय वर्ण की थी। इन्होंने कहा आपने हमें स्पर्श कर दिया, ये भौमासुर ने स्पर्श कर दिया, तो अब विवाह कौन करेगा हमसे। तो फिर कृष्ण का कोई चिंता नहीं, मैं विवाह कर लेता हूं। और 16,100 रानियों से उन्होंने एक साथ विवाह कर लिया। और ऐसा नहीं कि कोई भी रानी असंतुष्ट रही। सारे 16,100 रानियों को उन्होंने बिल्कुल संतुष्ट रखा और हर एक के लिए एक बड़ा बड़ा राजमहल था, सारी सुविधाएं थी। तो ये है भगवान, ये है कृष्णा। कई बार लोग निंदा करते हैं, ये कैसे भगवान है जिनके पास 108 जो है 16,108 रानियां हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इसका उत्तर ये है कि ये तो सबूत है कि ये भगवान है, नहीं तो कौन है जो व्यक्ति 16,108 रानियों से विवाह कर सकता है और 16,001 के साथ जो है एक ही साथ उपस्थित रह सकता है, संभव नहीं है। और सिर्फ 16,100 के बाद और 8 रानियां हैं जो प्रमुख मानी जाती हैं, उनके थोड़े नाम बताइएगा। 8 जो प्रमुख महिषियां हैं कौन है? रुक्मिणी देवी, सत्यभामा, जाम्बवती, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, कालिंदी, मित्रविंदा। ऐसी ये 8 रानियां हैं भगवान के 16,108। तो द्वारका के महिषीगण ये भी भगवान की शक्ति मानी जाती है, शक्ति तत्व है, शक्तिमान और शक्ति। जैसे सूरज और सूरज की किरणें, सूरज शक्तिमान है तो सूरज की किरणें शक्ति हैं। तो उसी प्रकार से भगवान जो शक्तिमान है और उनके साथ शक्ति, शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा हम देखते हैं कि भगवान के साथ में उनकी शक्ति अवश्य रहती है। सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण आदि, और फिर अंत में वृंदावन की गोपियां, ये भगवान की शक्ति मानी जाती हैं। तो यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, ईश्वरेर शक्ति होय ए तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, व्रज गोपी गण आर सभते प्रधान, व्रजेन्द्र नंदन जते स्वयं भगवान। ये जो तीन शक्तियां हैं ये तीन प्रकार की हैं, परंतु इनमें से तीन, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ गोपीगण है, क्योंकि वो साक्षात परम सत्य श्री कृष्ण की सेवा ब्रज में कर रही होती हैं। गोपियों में से प्रमुख 16,000 माने जाते हैं, अनगिनत गोपियों में से 16,000 में से जो है 108 प्रमुख माने जाते हैं। 108 में से 8 प्रमुख माने जाते हैं, 8 प्रमुख गोपियों में से 2 प्रमुख मानी जाती हैं, उन 2 में से 1 प्रमुख मानी जाती हैं, और वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्तिमान लादिनी शक्ति हैं, और जितने भी अन्य शक्तियां हैं वो सब श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार से जितने भी अवतार हैं, जितने भी विलास और प्रकाश विक्रय हैं जो कि उत्पन्न होते हैं भगवान से, वो श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं, वृंदावन के श्री कृष्ण से, उसी प्रकार से जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी ब्रज की गोपियां हैं, जितने भी महिषिका हैं द्वारका में, जितने भी लक्ष्मी देवियां हैं वैकुंठ में, वो सब श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। श्रीमती राधा रानी मूल शक्ति हैं भगवान कृष्ण की। तो ये है शक्ति तत्व। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ने शक्ति तत्व का वर्णन भी किया, और आगे चल के अंतिम जो तत्व है जो स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनका वर्णन वो आगे होकर भी और करने वाले हैं। इस प्रकार से ये पहले श्लोक का वर्णन कविराज गोस्वामी यहां करते हैं। पहला श्लोक, वंदे गुरु ईश भक्तान ईश अवतारकान तत्प्रकाशास्पद शक्ति कृष्ण चैतन्य संयुगम। अब इस प्रकार से वर्णन करने के बाद वो कहते हैं कि अब मैंने क्रम से परम सत्य के विभिन्न तत्वों का वर्णन कर लिया है। इस प्रथम श्लोक में मैंने सामान्य रूप से मंगलाचरण अर्पण किया है, सामान्य रूप से भगवान का गुणगान किया है, नमस्कार किया है, और अब दूसरे श्लोक में मैं विशेष रूप से भगवान का गुणगान करूंगा और उनके चरणों में नमस्कार करूंगा। तो ये है वो प्रसिद्ध श्लोक जिसको यहां लिखा गया है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो। ये सब श्लोक आपने सुना होगा पहले भी, लेकिन आज काफी समय हो गया है तो इस श्लोक की चर्चा आज नहीं करेंगे। अब शुक्रवार के दिन इस श्लोक की चर्चा करेंगे और इसके बाद प्रथम अध्याय समाप्त हो जाएगा और फिर दूसरे अध्याय में मंगलाचरण के तीसरे श्लोक की व्याख्या कविराज गोस्वामी करने वाले हैं। तो इसके साथ मंगलाचरण का पहला श्लोक जो है वो समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। तो आपके कोई प्रश्न हो या टीका हो तो आप कह सकते हैं। हाँ जी, माइक ध्यान दीजिएगा।
हरे कृष्ण। विलास विग्रह और जो विलास कर जैसे राम जी और हरि, उनमें कोई जन्म का क्या अंतर है?
अधिक अंतर नहीं है। विशेष करके जो यहाँ अवतार लेते हैं, जो यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, उनको अवतार कहते हैं। सब तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के प्रकाश ही हैं, या तो उनके अंश हैं या उनके कला है। कला मतलब अंश के अंश या अंश के अंश के अंश, इनको कला कहते हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी करते हैं। तो एक दृष्टि से ये ऐसे विभाजन नहीं है जो बिल्कुल जैसे है कि ओवरलैपिंग भी थोड़ा बहुत है, तो हमें समझ लेना चाहिए। जैसे गुड़ अवतार भी विष्णु हैं और विष्णु को भी हम मान सकते हैं कि ये भी एक विलास विग्रह हैं भगवान के। तो अगर कोई भगवान का एक रूप है तो वो एक से भी अधिक कोई वर्ग में आ सकते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ जी, माइक वहां भिजवाइएगा।
हरे कृष्ण। प्रकाश विग्रह है, लघु विग्रह है, इसमें क्या अंतर है?
अंतर वही है जो कि वृंदावन के कृष्ण में और द्वारका के कृष्ण में है। वृंदावन के कृष्ण और द्वारका के कृष्ण एक हैं या अलग हैं? बताइए, माइक है आपके पास? अलग है, एक भी है और अलग भी है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये कौन है? कौन से विग्रह हैं? विलास विग्रह। तो विलास विग्रह के भी विलास विग्रह हो सकते हैं या विलास विग्रह के भी प्रकाश विग्रह हो सकते हैं। ये है भगवान की अनंत शक्ति। तो वासुदेव कृष्ण ये भी अंश है, अंश अवतार है भगवान के, वो भी प्रकाश है भगवान श्री कृष्ण के। वृंदावन में जो श्री कृष्ण विराजमान है वो तो वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। जब पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद एक परीक्षा होगी, लेकिन घबराइए नहीं। केवल वो भक्त जो परीक्षा देना चाहते हैं, आपके लिए अनिवार्य नहीं है, केवल जो भक्त देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और जो परीक्षा के लिए बैठेंगे आपके लिए विशेष पुरस्कार होगा। और परीक्षा बहुत ही आसान होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। लैंग्वेज हिंदी में होगा या देखेंगे। हरे कृष्ण।